ओम शांति। 3 अप्रैल 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साक्षी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप गूगल मीट पर या यूट्यूब लाइव पर जुड़ सकते हैं। एक लिंक रोजाना के लिए चारों टाइम के लिए रहता है। यदि आपको जुड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं इसी में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते, मीठे झाड़ को कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है, आपके बाबा के पास कौन सी दवाई है? एक ही दवाई, एक ही गोली है, वो सबको देनी है। परंतु हाँ जी, एक ही गोली है, मन मना भाव। अपने मन को बैठकर मनाओ, अपने मन को बैठकर मनाओ। प्रश्न, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? कि ये पास विद ऑनर होगा। कैसे पता लगेगा? वे सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। फूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है। फूल सेवा करने से बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है। लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए और तीसरा चलन भी चाहिए, चौथा दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, चारों सब्जेक्ट में पूरा का पूरा अटेंशन है तो वो पास विद ऑनर हो सकेंगे। सिर्फ अटेंशन का मतलब ये नहीं कि हम अटेंशन तो दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबको दे रहे हैं, उसके बाद हम कहीं और भी चले जाते। पास विद ऑनर होना है तो चारों सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेनी है। किसी भी सब्जेक्ट में कम हमें नीचे ले जाएगा। गीत, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। बच्चों की किस से दिल लगी हुई है? मुंह से कलवाना चाहता है, कितना चलाक है ना बाबा, मुंह से कलवाना चाहता है। बताओ किससे दिल लगी हुई है? सारी मतलब मुंह से, हमारे मुंह से निकलवाना चाहता है। ये किसी और को बोले तो मेरे को थोड़ा यहां से छुट्टी मिले। गाइड से किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है, बच्चों को नाम भी दिया है गेट वे टू हेवन, गेट वे टू हेवन स्वर्ग की तरफ जाने वाला दरवाजा। जो बॉम्बे में है वह है गेट वे टू, गेट वे ऑफ इंडिया, स्वर्ग का फाटक। कब खुलता है? अभी तो हेल है ना, हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है, हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट। गोले सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही है, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। ये गेट है, सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे, सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। सारे चक्र को गेट क्यों नहीं कहेंगे भाई, क्या बोल देते हैं? हम सत्य से त्रेता में गए तो गेट खुल गया ना, त्रेता से द्वापर में गए तो गेट खुल गया। हाँ जी, गेट तो गेट। हाँ जी,
जाने का रास्ता बंद होता है, सिर्फ आने का रास्ता चालू होता है।
परम धाम से ना, परम धाम से आने वाला रास्ता चालू होता है, कोई जा तो सकता नहीं, बस यहाँ तो जा सकते हैं ना, इसको गेट नहीं कहेंगे, इसको गेट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहीं पर ही रहना है, इसी पृथ्वी पर रहना है। परम धाम से बाहर निकले, पृथ्वी पर आ गए, कर्म क्षेत्र में आ गए, और कर्म क्षेत्र में आने के बाद कर्म क्षेत्र से कोई भी आत्मा निकल नहीं सकती। कब तक? कब तक नहीं निकल सकती? गेट का, गेट खुलने की शर्त क्या है?
अपने आप को आत्मा समझना।
और
संपूर्ण बनाना,
संपूर्ण बनना बनाना, हाँ, हिसाब किताब सुख होना,
उसका अकाउंटिंग हिसाब किताब बराबर
होगा, जब कार्मिक अकाउंट बराबर होगा फिर घर जाए,
तब ही वापस जाए,
तब दरवाजा खुलता है। जब तक कार्मिक अकाउंट है दरवाजा नहीं खुलता। कितना कंप्यूटर से एकदम, कंप्यूटर में फिर भी जो है ना मार्जिन गलती हो सकती है, वो तो यहाँ गलती नहीं है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया है वो है पूरा गेट। सृष्टि चक्र को देख रहे हैं, ऊपर संगम लिखा है, वहां ब्रह्मा बाबा बैठे हुए हैं, मम्मा बैठी हुई है, वहां से आत्माएं ऊपर जा रही, वहां है गेट। आत्माएं, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती है। सारी आत्माएं वहां से निकल जाती हैं, परम धाम चली जाती हैं, और फिर नीचे सतयुग में अपने नंबरवार आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाया है, कांटा क्या होता है? ये कांटा दिखाया है, क्या कांटा दिखाया है? सुई दिखाई है,
क्या कर रहा है भाई?
कांटा सुई को कहा है, घड़ी की सुई, घड़ी की सुई जो है वो अभी 12 पर आई नहीं है, वो दिखा रही है। जब वो सुई 12 पर आएगी ना, तब सारी आत्माएं एक ही सेकंड के अंदर परम अवस्था में चली। ये नर्क है, वे स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन, हेवन ऊपर होता है या नीचे होता है? तो बाबा कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? अब वहां ऊपर वाला दरवाजा बताओ भाई जी कहाँ गया? गेट वे टू हेवन ऊपर है या नहीं? नीचे है।
गेट ऊपर वाली स्थिति है भाई जी।
हाँ जी,
ऊपर वाली स्थिति है।
हेवन तो परम धाम में नहीं होगा ना?
हेवन स्वर्ग है भाई जी।
हेवन तो स्वर्ग है, हेवन तो इसी धरती पर होगा।
हेवन जब है हमारी स्थिति अच्छी होगी, हम परम।
इसके लिए हमारा जो बाबा का जो चित्र है ना, कौन सा चित्र याद आ रहा है आपको? हाँ जी, सीढ़ी का नहीं भाई, अच्छे से चित्र का नाम लो जहाँ बाबा का है। किसका ध्यान गया है उस चित्र पर? कौन से चित्र से आप ये दिखा सकते हो
भाई जी? यज्ञ का चित्र जो एक तरफ से आ रहे हैं,
हाँ,
यज्ञ कर रहे हैं, एक तरफ जा रहे
हैं, यज्ञ वाला चित्र। उस चित्र के ऊपर नाम क्या है, किसको मालूम है? पुरुषोत्तम संगम युग। उसके साथ कुछ और भी लिखा हुआ है, काल पुरुष नहीं
है
पुरुषोत्तम संगम युग वाला चित्र है, आपने उसे दिखाया था मैंने अभी एक दो दिन पहले ही। इसमें नर्क से निकलकर आत्माएं बाहर आ रही हैं, एक यज्ञ हो रहा है, उसमें आहुति दे रही हैं, नर्क के दरवाजे से निकलकर आ रही हैं और स्वर्ग के दरवाजे में जा रही है। वहां पर सारे ब्रह्मा वत्स बैठे हैं। एक स्थूल यज्ञ दिखाया है, एक सूक्ष्म यज्ञ दिखाया, एक दिखाया है स्थूल यज्ञ और एक दिखाया है सूक्ष्म यज्ञ। ये चित्र आपको याद आ रहा होगा।
प्रभु मिलन का गुप्त युग है।
हाँ, प्रभु मिलन का गुप्त युग, अविनाशी रुद्र, गीता, ज्ञान, यज्ञ। अविनाशी रुद्र, गीता, ज्ञान, यज्ञ। ये देख रहे हैं आप, ये दिखाई दिया आपके लिए, ये है अविनाशी रुद्र, गीता, ज्ञान, यज्ञ। जो नीचे बैठ करके आप देख रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आहुतियां दे रहे हैं और ये इधर नर्क से आ रहे हैं। उसके ऊपर ताकि समझ में आए ऊपर लिख दिया है नर्क, देख रहे हैं ऊपर लिखा है नर्क और इधर लिखा है स्वर्ग। आओ और अपनी बुराइयों की आहुति दो, इस नर्क से आओ, संगम युग पर राजयोग के द्वारा पवित्र बन के सत्युग में जाओ। तो ये दिखाया है हमें स्वर्ग, हेवन का दरवाजा। दोनों दरवाजे दिखाई दिए, हेल का दरवाजा और इधर हेवन का दरवाजा। तो बाबा कहते हैं ये दरवाजा सिर्फ इस समय होता है, ये तपस्या करते हुए दिलवाड़ा मंदिर और ये हमारा जड़ जड़ दिलवाड़ा मंदिर और ये हमारा ऊपर ये व्हाइट व्हाइट जो दिखाई दे रहा है ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है और ये जड़ दिलवाड़ा मंदिर है। इस तारे को पूरा करने वाला है पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता शिव परमात्मा ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज। ठीक है, ये चित्र स्पेशल आज की मुरली के लिए है। गेट वे टू हेवन, ये हेवन गेट वे ऊपर कोई परम धाम जाने के लिए नहीं है, ये इसी धरती पर ही आने के लिए। परम धाम में तो हम आत्माएं सिर्फ एक साल के लिए जाती हैं, यहाँ उस एक साल के जाने और आने का जिक्र बाबा नहीं कर रहे हैं। इसको तो बाबा कहते हैं वेटिंग रूप में, यानी जब तक उसका नीचे पार्ट नहीं है तब तक वो वहां से नहीं आएगा, परंतु यहाँ से जाना है हमको स्वर्ग, गेट वे टू हेवन। ये बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश, परमात्मा आकर गीता का ज्ञान सुनाकर अनेक धर्मों का या उसे कहें अधर्मों का विनाश कराते हैं और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, ये गोला ही मुख्य चित्र है, इसमें नर्क का द्वार स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। क्लियर हुआ, सारे के सारे शांति द्वार में जाएंगे, कल्प पहले जो गए थे वही जाएंगे, वो अपना शरीर यहीं सुरक्षित रख के जाएंगे, आत्माएं सिर्फ जाएंगी हाथ लगा के एक साल के लिए वापिस आ। नर्क का द्वार बंद हो जा, शांति और सुख का द्वार खुलता है। नर्क के द्वार से दरवाजा बंद हो जाता है, उनमें सारी आत्माएं नर्क से निकलकर आ जाती हैं, सारी पहले चली जाती हैं शांति धाम में, एक साल में सारी दुनिया एकदम शुद्ध हो जाती है, पवित्र आत्माओं के रहने की धरती तैयार हो जाती है, तब वो आत्माएं आना शुरू करती है। सबसे फर्स्ट क्लास ये चित्र है, सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है, मतलब जो नए आते हैं उनके आगे ये चित्र रखो, तुम्हें यदि स्वर्ग में चलना है तो ये रास्ता, ये तरीका, ये दरवाजा, ये सबसे आगे रखो। चित्र ये है, बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति दो गोले और ये चक्र, फर्स्ट क्लास। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ, स्वर्ग में जाने का ये गेट है और ये नर्क है, ये स्वर्ग है। नर्क का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है, इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कितना सहज है, स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए, अभी हम लायक बने। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोल गोले का है, बुद्धि से समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है, बस चित्र एक बार देखना होता है फिर बुद्धि से ही काम लेना होता है। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्याल चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य हो, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है, हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है। असली नाम क्या है इसका? भारत ही है। वापिस भारत नाम हो गया। भारत खंड कहते हैं। ये तो गलियां, गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़े ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं, भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। ये अनराइटियस सतयुग में था। ये है अनराइटियस, ये गलत। हिंदी भाषा कब पैदा हुई कोई बता? किसी को फॉलो है? वैसे तो चैप्टर नहीं है आपका, इससे लिंक नहीं है। हिंदी भाषा कब पैदा हुई? नहीं, ये पैदा हुई अपना जब अंग्रेजों ने यहाँ पर लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज खोला 1850 में। उन्होंने चार विशेष प्रोफेसर, सदल मिश्र, इंशाला खां, लल्लू लाल और एक और था सदा शुक्ला, ये चार प्रोफेसर थे जिसमें मुसलमान भी प्रोफेसर है, ठीक है? इंशाला खां और सदल मिश्र, ये दोनों मुसलमान हैं और दोनों हिंदू हैं। इन चार प्रोफेसर को अंग्रेजों ने, अंग्रेज गवर्नमेंट ने कि यहाँ की जो भारत, यहाँ की जो पढ़ाई है हिंदी, क्योंकि सारे कहते थे कि हिंदी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, कहते हिंदी का लिटरेचर दो ना, अब किताबें तो नहीं हिंदी की, पढ़ाए कहाँ से? हिंदी की कोई बुक ही नहीं जो पढ़ाई जाए। तो उसके बाद जो है ना, जो यहाँ की भाषा थी भी, हमारी भाषा पढ़ाओ, तो कहते किताब दो ना कोई जिससे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाए? तो इन चारों का काम था हिंदी साहित्य लिखने का। तुमने अरबी का, फारसी का, उर्दू का, इंग्लिश का, दुनिया भर की किसी भी भाषा का कोई कहानियां है जो भी है, उनका अनुवाद करो हिंदी, हिंदी में दो हमें।
हमारे पास गुरुकुल थे, उसके अंदर कौन सी भाषा?
संस्कृत, संस्कृत, वही पुराण वेद जो संस्कृत में लिखे हुए वही पढ़ाए जाते थे, क्या नहीं? तो उन चार लेखकों ने मतलब लिखने का काम किया। दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत के अंदर हुए थे, उनको भारतेंदु की उपाधि भी, भारत के आधार पर भारत का चांद ये उपाधि दी गई थी। उसने अपना धन कहा कि जिसको जो मेरे पास लिख के लाएगा ना, मैं उसको पैसे दूंगा। खुद भी लिखा उसने और औरों को भी कहा कि तुम लिखो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने अपना सारा खजाना, जो भी धन संपदा थी, वो हिंदी के लिटरेचर लिखने के लिए दे दी। कभी ना जो लिखेगा मैं उसको पैसे दूंगा, ले के आओ, लिख के ले आओ, कॉपी करके लाओ, नकल करके लाओ, कहीं से लाओ, ले आओ। मतलब ऐसे उस एक जो ना तूफान चला था। तो ये हिंदी को उर्दू की बेटी कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन आता है हिंदी उर्दू की बेटी है, मतलब उर्दू पहले थी, हिंदी बाद में बनी, हिंदी इससे पहले नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं कि इस हिंदी का कितना समय है, कब चली है। ये मुगलों ने आकर के हिंदी का जन्म दिया, उर्दू की बेटी। बात सारी बातें नहीं, तो जो तो ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि उर्दू जो ये मुसलमान थे जो भारत में आए हुए थे, वो हमारी वो अपनी अरबी भाषा को जो यहाँ बोलते थे उसे उर्दू कहा गया, फिर उर्दू से हिंदी का जन्म हुआ। मैंने बताया दो प्रोफेसर थे मुसलमान और दो प्रोफेसर थे हिंदू, और इन चारों को कहा गया कि तुम इसको बनाओ भाई, ठीक है? तो ये उन्होंने शुरू किया। तो खैर, हमारा इस विषय में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आ गया तो मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र कर दिया। अनराइटियस सत्य में था। अच्छा, वो है अनराइटियस। क्या अनराइटियस है? ये कहना कि हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी, ये अनराइटियस है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, और यहाँ सब झूठ हो गया है। तो ये गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति का तरीकी श्रेष्ठ मत देते हैं, बाप की मत पर मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। तुम बच्चों को है कितना सहज मत देते हैं, बाबा आकर तुम बच्चों को कितना सहज मत देते हैं, भगवान की श्री मत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवानोवाद। इसलिए बाबा ने कहा था, पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे, ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, इधर भी ब्रह्मलोक में चले जाए वहां कुछ भी तो नहीं, ना बैठने की जगह ना खाने का चीज, कुछ भी नहीं है वहां कौन जाना चाहता है। तो कुछ ना हो तो चलो भी वहां चले जाए खाने पीने सोने के लिए, चलो आराम करने की जगह मिल जाए, तारपे मिल जाए, कुछ चटाई मिल जाए, हाथों को कुछ चाहिए, हमने यहाँ कितना सामान अपने लिए इकट्ठा किया वो सारा बेकार, जलने के लिए तैयार। स्वर्ग भी यहाँ नर्क भी यहाँ होता है, स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, बिल्कुल न्यारे, एक दूसरे से बिल्कुल न्यारे। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई, कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं और कलयुग के लिए कहते हैं अभी 40,000 साल और पड़े, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में, है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं, मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है, माम एकम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। आशिक माशुक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति भी कर्म ते कर्म तो भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है, याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ एक बाप को याद करो, सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो, कहते हैं कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वो है कौन ये जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है, उनको कहते हैं परम आत्मा अर्थात सुप्रीम, ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है दो चीज तो है ना, ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वे क्या चीज से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं कि सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते, आत्मा को जान जाएं तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते, तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं, वे सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे भी बंद करने से, शीशे में बंद करने से देख कैसे सकेगी। वो कहते शीशे में बंद कर दिया और आत्मा निकली तो शीशा टूट गया। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं, तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है, वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है। बहुत सारी हमारे बीके बहने भी इस बात का बाबा की मुरली को इग्नोर करके इस बात को कह देती हैं यहाँ पर, कि शीशा टूटा और आत्मा निकल गई। क्योंकि एक वीडियो बना हुआ है जिसमें दिखाया है कि शीशा टूटता है और आत्मा निकल जाती है। और यहाँ पर देखो बाबा ने कितना क्लियर क्लियर मना किया है कि उसको कोई भी रोक नहीं सकता। ये सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से, तो शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे? मतलब वो शीशे में बंद कर दोगे आत्मा को, डेड बॉडी को बंद कर देंगे? मतलब ये क्वेश्चन बहुत वंडरफुल बात है कि जो उन्होंने तो कह देते हैं जी अमेरिका में किया, कह दो अमेरिका में, कौन पूछने जा रहा है उसको, लगा दो किसी भी डॉक्टर के ऊपर क्या नहीं। अब वो फिल्म का सीन है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। फिल्म में कुछ भी दिखाना कोई मुश्किल नहीं होता, तो उन्होंने दिखा दिया उसके अंदर। अब मतलब उसके लिए से एक जनरल में प्रिंट किया गया उसका, कि देखिए कि कोई भी किसी व्यक्ति को मतलब ऐसे शीशे में जहां वैक्यूम कर दिया जाए, ये तो तुम जानबूझकर उसको मार रहे हो, ये तो मर्डर है। उसे लिखवा लिया, उसको मारने के लिए आपने उससे लिखवा लिया, गवर्नमेंट से परमिशन ले ली कि हम इसको मारना चाहते हैं, मतलब रिसर्च करना चाहते हो मार करके। क्यों भाई, क्यों रिसर्च करना चाहते हो कि आत्मा क्या है देखना चाहते हैं? तो गवर्नमेंट से परमिशन ली गई कि ठीक है जी, एक आदमी को आप मार दो। उससे लिखवा लिया गया और गवर्नमेंट से परमिशन ली गई, और उसके बाद जो है उसको शीशे में बंद कर। तो बाबा कहते कैसे देख सकते हो उसको शीशे में? दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज क्यों नहीं, कोई को नहीं है। तुम जानते हो हाँ आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है। वहां तो आत्मा पतित आत्मा नहीं रहती, परम धाम में तो कोई पतित आत्मा नहीं रहती, वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ये बहुत ही सहज से सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगाए अब तमो प्रधान बन गई है, हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो, मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ तुम सुन लेते हो। ये है रथ, तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए गेटवे। नाम क्या रखना चाहिए? गेटवे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म, जो देवी देवता धर्म था, वे अब प्राय लोक है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं, झाड़ भी पुराना जरूर होता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इस झाड़ का इस हजार के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। ये ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़े कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं। ये तो अनादि खेल बना हुआ है, ये क्या है? अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था, अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना करो। भगवानोवाच लिखा हुआ है, भगवानोवाच लिखा हुआ है। ये भी सब कैसे कैसे रहते हैं, क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहां गया, ये कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे ये सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में ये भी किसको पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी को का माशूक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है। नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले, सिर्फ जानते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है, कैसे होती है। हम जो पूज्य थे वे फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे, हो सकता है। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे थे?
शालिग्राम
के रूप, आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। हम जो पूज्य थे वही फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे, हो सकता है आगे पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्री नाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है, स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे। भगवानो वाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। ये बाबा रेजगारी बातें हैं, रेजगारी क्या होता है? छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सिक्के होते हैं ना, रेजगारी कहते हैं। बीज और झाड़ है, तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाता है। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। बाप ने भी मन मना भाव की दवाई बहुत अच्छी दी है। मन मना भाव ना होने से कीड़े खा जाते हैं, कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वे तो फेंकी जाती है। कहां ऊंच पद, कहां नीच पद, फर्क तो है ना। नीचे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, खीर खंड बनो। वहां शेर बकरी भी खीर खंड रहते हैं, तो बच्चों को भी खीर खंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है तो तकदीर भी क्या करे, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने, टीचर पढ़ाते तो सबको है, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे है, स्कूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख देने वाला काम करती है। कितना सब भोली दादी के बारे में जिक्र हो रहा है, कितना सब याद करते हैं। ये तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना है, रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन बना भव, फिर बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है, मुख्य बात है ही ये अंधों की लाठी बनना। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं। ये नर्क है, ये स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव, हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है गीता का। भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। खोलता है शिव बाबा, श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेलगाड़ी। मुख्य चित्र है दो, बाकी तो रेलगाड़ी है। छोटी छोटी बातें सुनता नहीं
भाई जी।
हाँ जी,
श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है, कैसे करता है?
खुद जाता है ना भाई, पहले तो वही जाता है ना, वही गेट को पार करता है ना। पहले शिव बाबा गेट खोलता है, श्री कृष्ण पार करता है, पीछे पीछे सारे चले जाते हैं। कृष्ण से पहले तो कोई घुस ना सके उसमें। हाँ, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। अभी ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्थूल दरवाजा खुलता हो और खुलते खुलने के बाद कृष्ण सबसे पहले एंट्री करता हो, परंतु वास्तव में कोई कृष्ण वहां एंट्री नहीं करता। आत्मा ही फटाफट आत्मा गई, एक सेकंड में सारी आत्मा है परम धाम में, फिर वहां से सीधा स्वर्ग में। ये भक्तों को समझाने के लिए भक्तों की भाषा में बताया जा रहा है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। ये कहती है हम तुमसे क्यों लूं? फिर तुम्हारी याद रहेगी शिव बाबा के भंडारे में, भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। वो भी पक्की थी नाले शिव बाबा के भंडारे में तो अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्तर नंबर एक अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीर खंड मीठा होकर रहना, कभी लून पानी नहीं होना, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। सब सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भक्त। हर आत्मा को क्या दिखाना है? हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी बनो। किसी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा, इससे विश्व की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा क्या बनो? विजयी बनो। क्या याद रखो? कि मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है। कैसे बनेंगे? सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो कि मैं कर्म योगी आत्मा हूं। कोई भी कर्म करते हुए याद भूले नहीं, हर कर्म बाबा की श्रीमत पर ही कर रहे हो। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकते, ऐसे कर्म योगी बनो। वह परमात्मा के श्रीमत के अनुसार ही हमारा कर्म हो, तब है कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।